तो आप सबका स्वागत है हर रविवार की तरह इस वीकली प्रोग्राम में। तो आज हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता का अध्याय 7, अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 20 से 25 तक। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भगवद गीता का ये जो संदेश है वो प्रदान कर रहे हैं। तो भगवद गीता किंचित अधीता, तो भगवद गीता का व्यक्ति थोड़ा भी अध्ययन कर लेता है तो वो कृष्ण का प्रिय बन जाता है। इस भौतिक जन संसार में हम सबकी इच्छा होती है, हम किसी ना किसी के प्रिय बनना चाहते हैं, नहीं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे जीवन में या हमारे हृदय में डिजायर होती है और हम और ये इच्छा कि हम किसी ना किसी के बहुत प्रिय बन जाएं या कोई मुझसे बहुत प्रेम करे, कि या हम किससे प्रेम करना चाहते हैं या कोई हमसे प्रेम करे, तो ये मनुष्य का स्वभाव है, ये नेचुरल है व्यक्ति के लिए। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से ये भगवद गीता का संदेश हमें प्रदान करते हैं, और बल्कि भगवद गीता ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जनरली हमें लगता है जो लोग हैं भगवद गीता का नाम सुनते ही कहते कि ये गीता हमारे लिए नहीं है, वो तो अर्जुन के जीवन में वो समस्या थी इसलिए अर्जुन के लिए है, हाँ मुझे गीता का कुछ लेना देना नहीं है। तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। दो प्रकार के जीव इस जगत में होते हैं, एक है बद्ध जीव और दूसरा है मुक्त जीव। तो जो बद्ध जीव है अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, कि अनादि काल से भगवान से वो बहिर्मुख हो गया है। दो प्रकार के मुख है, एक है बहिर्मुख और एक है उन्मुख। बहिर्मुख का मतलब है कि भगवान की तरह अपनी पीठ करना, और उन्मुख का मतलब है कि भगवान की ओर हमारा मुख करना, फेस करना। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आजकल के जो भारतीय हैं वो उन्होंने क्या किया है कि भगवान की ओर उन्होंने पीठ किए हैं, है भगवान के नजदीक, भारतवर्ष में जन्म लिया है, मथुरा वृंदावन सारे धाम तीर्थ आदि यहाँ है, पवित्र नदियां हैं, सरोवर आदि हैं, और उनको भगवान का स्मरण करने की संधि है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों ने अपना जो मुख है भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की भगवान से विपरीत दिशा में किया है, अमेरिका की ओर किया है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो विदेशी लोग हैं वो दूर है भगवान से लेकिन उनका मुख भगवान की ओर है। तो इस प्रकार से जो बद्ध जीव है, एक प्रकार का जीव जो अनादि काल से भगवान से बहिर्मुख है, क्यों बहिर्मुख है, क्योंकि भगवान से अलग होकर भौतिक भोग की कामना कर रहा है, तो इसलिए वो इस भौतिक संसार के जंजाल में अधिक से अधिक फंसता जा रहा है। और दूसरा प्रकार का जीव वो भी इस भौतिक जगत में है और वो भगवान के धाम वैकुंठ में भी है। तो जो बद्ध जीव है केवल भौतिक जगत में है, हम सारे बद्ध जीव हैं, और जो मुक्त जीव है, मुक्त जीव जो इस भौतिक जगत से मुक्त होता है, भगवान के साथ वो निवास करता है, तो भगवान अपने प्रिय भक्तों को जो मुक्त जीव है उनको इस जगत में भेजते हैं ताकि बद्ध जीवों के बंधन को खोलने के लिए है और उनको वापस वैकुंठ ले जाने के लिए, जो दुखों से रहित स्थान है। तो अर्जुन वैसे भक्त है, कौन से भक्त है, मुक्त जीव है। कौन से जीव है अर्जुन, मुक्त जीव है। लेकिन भगवान अर्जुन से बद्ध जीव का एक रोल अदा करवा रहे हैं, जैसे ड्रामा में अलग अलग रोल्स करने पड़ते हैं, तो वैसे ही भगवान को कभी भी ना भूलने वाला अर्जुन और भगवान के सारे उपदेशों को अपने हृदय में धारण करने वाला अर्जुन युद्ध स्थल में मोहग्रस्त हो जाता है। कौन कराता है उन्हें मोहग्रस्त? कृष्ण। भगवान उनको एक प्रकार से दो भगवान की शक्तियां हैं, वो अलग अलग जीवन को मोह में डाल देती है। एक है महामाया। कौन सी माया? महामाया, जो बद्ध जीवों को इस मोह में डाल देती है। और जो महामाया के प्रभाव के कारण इस संसार में व्यक्ति भगवान को भूल गया है और अपने शरीर और शरीर से संबंधित जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसी को ही सर्वे सर्वा समझ रहा है, अब उसे ही प्रेम कर रहा है। तो बद्ध जीव के ऊपर महामाया का प्रभाव होता है, इसलिए किसी अध्याय की गीता में कृष्ण कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्रया। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया शक्ति है, ये तीन गुणों से बनी हुई है और ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत बलशाली है, बहुत स्ट्रांग है। इससे इसको लांघना या इसको पार करना, जैसे समंदर को आप तैर के नहीं पार कर सकते, किसी बोट का सहारा लेकर आप पार कर सकते हो, उसी प्रकार से भगवान की जो ये महामाया शक्ति है उसको पार करना बद्ध जीव के लिए असंभव है। लेकिन वो उसे पार कर सकता है यदि वो एक बोट का सहारा ले, और वो बोट क्या है? भगवान कृष्ण के शरण कमल। शास्त्र कहते क्या है? भगवान कृष्ण के शरण कमल ऐसी बोट है कि हजारों बार ये बोट इस तट से दूसरे तट पर चली गई है, फिर भी इस तट में हमेशा अवेलेबल है। तो बद्ध जीव इस महामाया को पार कर सकता है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके, या महामाया के द्वारा भ्रमित होता है। लेकिन जो नित्य मुक्त जीव हैं, उनको भगवान मोहित करते हैं। कैसे? भ्रमित करते हैं या अपनी माया का पर्दा डालते हैं, उसे कहते हैं योग माया। कौन सी माया? योग माया। तो भगवान भक्तों के ऊपर योग माया का वर्चस्व डालते हैं, जिसके द्वारा वो कभी कभी भगवान की स्थिति को समझना भूल जाते हैं। अर्जुन के ऊपर वैसे ही है, अर्जुन कभी भी एक क्षण के लिए कृष्ण को नहीं भूल सकते, लेकिन भगवान योग माया के पर्दा डालकर उनसे हमारे लिए ये शिक्षा प्रदान करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाते हैं, जिसके द्वारा ये जो भगवत ज्ञान है सातवें अध्याय में या भगवत गीता में कृष्ण हमें प्रदान करते हैं। तो आपने इस अध्याय में पिछले कई श्लोकों से सुना है, शुरुआत में कृष्ण इस अध्याय में बहुत जोर देते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो नॉलेज मैं अभी अभी सुनाने जा रहा हूं, इसको बड़े गंभीरता से सुनो। जस्ट हियर, भगवान कहते टच, सुनो, हाँ सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सर्वोत्तम और सुपर फास्ट तरीका क्या है? अधिक से अधिक भगवान के इस दिव्य ज्ञान को सुनते रहना, क्योंकि जितना अधिक और बारंबार नित्य रूप से हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, उतना ही हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन की इमरजेंसी महसूस होगी, और हमें हमेशा इमरजेंसी महसूस होगी कि मेरे जीवन में कृष्ण का आना बहुत महत्वपूर्ण है, या मुझे इस भौतिक जगत से कृष्ण के पास वापस जाना अति आवश्यक है। माया क्या करती है? हमारे कान बंद कर देती है। कैसे बंद करती है? जब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए आते हैं या सुनने का मौका मिलता है, तो माया कई सारे बहाने क्रिएट करती है, कई सारे कारण, कई सारे रीजन हमें देती है कि नहीं अभी स्किप करो ना, इस समय क्या इतनी आवश्यकता है भगवान के बारे में सुनने की। हाँ, तो माया का ये हमेशा काम है, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ रीजन देती रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति जितना अधिक बारंबार भगवान के बारे में सुनता है, उतनी ही तीव्रता से वो कृष्ण की ओर पदार्पण करता है। फिर भगवान इस अध्याय के शुरुआत में कहते हैं, कैसे सारी चीजें हाँ मुझ पर निर्भर है। हाँ, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं उसी प्रकार से हूँ, सूत्रे मणि गणाइवः, कि जो माला है उसके अंदर जो थ्रेड है, सारे मणि उसके ऊपर आधारित है, लेकिन हमें वो सूत्र दिखाई नहीं देता, धागा दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से ये सारा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन हम भगवान को अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना अनुभव कर पाते हैं ना देख पाते हैं। जिस प्रकार से माला के अंदर हम मणियों के नीचे धागा है और वो सारे मणि उस धागे पर टिके हैं और धागे को हम नहीं देख पाते, तो इस प्रकार से भगवान भौतिक इस संसार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें जो व्यक्ति है उसे मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर भगवान चर्चा करते कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, नमा दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत अज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो मनुष्यों में अधम हैं, मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया है और नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, ऐसे चार प्रकार के लोग कृष्ण कहते मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। फिर भगवान कहते चतुर्विदा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। अर्थ, अर्थ का मतलब है जो बहुत दुखी है, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए और जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है कि भौतिक जगत क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं जगत का दुख अनुभव नहीं करना चाहता, वो भी भगवान की शरण में आता है। और चौथा है ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी ही चारों में से ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं है, बाकी तीनों को कुछ ना कुछ इच्छा लगी हुई है। इस प्रकार से भगवान शरणागति का वर्णन करते हुए, मुझे कौन कौन व्यक्ति शरण ग्रहण करता है उसका वर्णन करते हुए अगले श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं कि देवताओं की शरण ग्रहण करता है। अगली कैटेगरी के लोग कौन से हैं? एक तो है चार प्रकार के जो मेरी शरण में नहीं आते, और एक है चार प्रकार के जो मेरी शरण में आते हैं। इस संसार में यही आठ कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, जो भगवान की शरण छोड़ नहीं जाना चाहते चार प्रकार के, और जितने भी भगवान के पास आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, वो इन चार कैटेगरी में है। फिर इनके अलावा एक कैटेगरी भगवान कहते हैं, वो कौन से हैं? जो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। किनकी शरण ग्रहण करते हैं? देवताओं की। इसलिए कृष्ण कहते हैं 20वें श्लोक में, कामस्तैस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक कामेच्छाओं से मारी गई है, ऐसे लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते बल्कि देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो देवताओं की शरण ग्रहण करने वाले लोगों का प्रमुख गुण है कि वो कांक्षतः कर्मणा सिद्धि यजन्ते इह देवता। भगवान कहते हैं कि जो पूजा के द्वारा तुरंत ही रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। तो देवता कितने सारे देवता हैं? तो भगवान भगवत गीता में हमें एक प्रकार से ये साइंस सिखा रहे हैं कि वास्तव में शरण ग्रहण करने योग्य कोई है तो मैं हूं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक भोग करने की भावना से मारी गई है, हाँ, मतलब कामेच्छा, कामेच्छा का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, काम भौतिक इच्छा का मतलब है काम वासना की इच्छा, दूसरा है भौतिक नाना प्रकार के भोगों की इच्छा, स्वर्गलोक जाने की इच्छा, स्वर्गों में अप्सराओं का संग प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, नेम फेम यश सौंदर्य, सुंदर पत्नी सुंदर पति, ये सारे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की जो कामना है वो भौतिक इच्छाएं हैं। भगवान को प्राप्त करने के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी क्या है, काम इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हैं। और ऐसी भौतिक इच्छाओं का, भौतिक इच्छाएं जब व्यक्ति के हृदय में जन्म लेती है, मन में जन्म लेती है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो उस इच्छा की पूर्ति के लिए पागल हो जाता है और उस इच्छा को पूर्त करने के लिए वो किसी भी हाथ को पार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। घृणित से घृणित, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य व्यक्ति अपनी भोग इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कामस्तस्ते हृदय ज्ञाना, कि ऐसी काम इच्छाओं के द्वारा उस व्यक्ति की जो बुद्धि है मारी जाती है या उसका ज्ञान, हृदय ज्ञाना, ज्ञान हर लिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर शरण ढूंढता है, किसकी शरण ढूंढता है, देवताओं की शरण ढूंढता है। कृष्ण के अलावा, परम भगवान के अलावा वो कई सारे देवताओं के पास जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, कई प्रकार के वर व्रत करता है, उपासना करता है, और उसमें एक ही चीज करता है, क्या, मन्नते मांगता रहता है बस। तो उसका नेचर क्या है, जो देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं उनका महत्वपूर्ण जो स्वभाव है कि वो भौतिक एंजॉयमेंट के प्रति बहुत अधिक आसक्त है। ये भौतिक पूजकों का लक्षण है कि उनके हृदय में क्या है, भौतिक भोग की बहुत प्रगाढ़ भावना है। तो ऐसे भौतिक भोग प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और वो फिर अपने मन से मनगढ़ंत सिद्धांत या फिलॉसफी को रचना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी देवताओं की पूजा करो, आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है, यतो मत ततो पद, क्योंकि सब कुछ एक है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है, भारत में हाँ ये सुपरमार्केट है, हर एक घर में, जैसे आप मॉल में जाते हो, सुपर बाजार में जाते हो, तो वहां सारी वस्तुएं हैं, तो वैसे ही ये देवता क्या है, हाँ इन्होंने अपना अपनी दुकान खोल के रखी है। हर एक देवता का अलग अलग डिपार्टमेंट है, भगवान ने अलग अलग देवता को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अलग अलग सेवाओं को करने के लिए। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, हेड है। तो लेकिन व्यक्ति उन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन देवताओं को अप्रोच करता है और अपने मनगढ़ंत सिद्धांत से वो ये सोचता है कि भगवान और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वास्तव में हमें किसी भी चीज को स्वीकार करना है तो वो शास्त्रों से करना चाहिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में इन सारे विषयों की चर्चा बहुत विस्तार से करते हैं। और ये जो देवताओं के पूजक हैं वो अपने आप को सर्वोच्च जो भोक्ता है, एंजॉयर है, वो कहते हैं एक महान, बल्कि देवतागण नहीं चाहते, इंद्र चंद्र वरुण शिवजी गणेश दुर्गा ये सब नहीं चाहते कि जीव हमारी पूजा करे। वो क्या चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण या राम की शरण ग्रहण करे। हाँ, जैसे पार्वती देवी ने पूछा महादेव से कि ओ महादेव, ओ शिवजी, आप सदैव मैं देखती हूँ कि ध्यान मग्न रहते हो, माला हाथ में लेकर क्या करते क्या हो, सारे लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके नाम का जप करते, लेकिन मैं घर में देखती हूँ कि आप भी किसी और के नाम का जप करते हैं, हाँ मुझे आप बताओ। तो जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम। हे देवी, हे पार्वती देवी, सर्वोत्कृष्ट आराधना करने के योग्य कोई है, सर्वोत्कृष्ट पूजा करने योग्य कोई है तो भगवान कृष्ण है, विष्णु है। किस प्रकार से वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं कौन से नामों का जप करता हूं, भगवान राम के नामों का जप करता हूं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा चार मुख है ब्रह्मा को, ब्रह्मा अपने चारों मुखों से कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, और शिवजी जिनके पांच मुख है वो सदैव राम राम नाम का जप करते हैं। तो इसलिए वो पार्वती को भी कहते हैं कि पार्वती तुम क्या करो, कृष्ण नाम का जप करो। पहले पार्वती विष्णु सहस्र नाम का जप करते थे, तो उनको कहा कि कृष्ण नाम का जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो इस प्रकार से देवतागण भी वो नहीं चाहते हैं कि हम उनकी शेल्टर ग्रहण करें, लेकिन हम भौतिक भोग की भावना से इतने अंधे होते हैं कि जिसके कारण हम देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और देवताओं को सर्वे सर्वा समझते हैं। बल्कि भगवान जानते हैं, हमारी श्रद्धा को किसी देवता में स्थिर करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म का है। अभी छोटे से बच्चे को 2+2 यही मैथमेटिक्स आ सकता है, उसको हायर मैथमेटिक्स दोगे तो बेचारा रोने लगेगा, पागल हो जाएगा। तो वैसे भगवान देखते हैं कि ये इसी लेवल का है, इसके हृदय में ये श्रद्धा का उदय हुआ है किसी देवता की पूजा करने का, तो उसे स्थिर कर देते हैं। और वो मेंटेन करते हुए धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि नहीं, हाँ, परम आराधनीय है, परम पूजनीय कोई और है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक महान भक्त थे जिनका नाम था चंडीदास। क्या नाम था? चंडीदास। चंडीदास से आप समझ गए होंगे किसके भक्त थे वो, चंडी के थे। चंडी में दुर्गा देवी, पार्वती देवी, हाँ उनके कई सारे नाम है। तो ऐसे चंडीदास उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी, आज भी उसी प्रार्थना से पार्वती देवी या दुर्गा या चंडी की उपासना होती है। उन्होंने जो प्रार्थना की थी, धनम देहि जनम देहि रूपवती भार्याम देहि, उनकी प्रार्थना क्या थी, धन चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, ब्यूटी चाहिए, पत्नी चाहिए सुंदर, हाँ पति सुंदर चाहिए तो शिव जी की पूजा करते हैं, अच्छा हेल्थ चाहिए सूर्य की पूजा करते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करने के लिए जाते हैं लोग। तो जब एक चंडीदास दुर्गा की उपासना करते थे, चंडी की उपासना करते थे, बल्कि ऐसे कहा जाता था कि वो बहुत बड़े भक्त थे, और उनके एक भाई थे, ये दोनों अलग अलग, उनके जो भाई थे वो किसकी पूजा करते थे, विष्णु की या कृष्ण की, शालिग्राम शिला उनके पास होती थी, साथ साथ घर, दोनों अलग अलग चीजों की पूजा कर रहे हैं। बल्कि देवताओं के उपासक सदैव भोग चाहते हैं, जैसे वृत्रासुर हुए हैं, वृत्रासुर सदैव शिवजी की पूजा करते हैं। एक बार श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में अपने शरीर का मांस काट काट के डालते हैं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और जब अलग अलग शरीर के जो अंग हैं वहां के मांस काट काट के यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, फाइनली उन्होंने अपना सर पकड़ा और गर्दन काट के डालने वाले थे यज्ञ में, तो वहां शिवजी प्रकट हो जाते हैं और शिवजी अपनी भार्या पार्वती के साथ आते हैं। तो ये वृत्रासुर शिवजी की कृपा या शिवजी की पूजा इसलिए कर रहा था, वो कुछ भौतिक भोग की कामना कर रहा था। तो जब शिवजी प्रकट हुए हैं तो उन्होंने शिवजी से मांगा कि मुझे एक वर दो। कौन सा वर दो? जिस व्यक्ति के हर सर में मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। तो उन्होंने जैसे शिवजी को देखा, शिवजी के साथ उन्होंने पार्वती को भी देखा। पार्वती को देखा तो उन्होंने सोचा, अरे ये शिवजी इनके साथ क्या कर रहे हैं, उसकी जगह मैं होना चाहिए पार्वती के साथ। इस भौतिक भोग की भावना का उदय हुआ, क्योंकि जो रजोगुण में है और जो तमोगुण में है वही व्यक्ति देवताओं की उपासना में नियुक्त रहते हैं। तो जैसे उन्होंने पार्वती को देखा, उन्होंने सोचा शिव जी मेरा कांटा है मेरे मार्ग में, तो शिव जी के पीछे भागा। तो उनके पास वर था कि जिसके भी सर में हाथ रखो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा शिव जी को ही भस्म करते हैं। शिव जी सोचे कैसा मेरा भक्त है, हाँ मुझे ही क्या कहते बिल्ली, हाँ हाँ जो बिल्ली है मुझे ही प्यार प्यार करती है, मेरी बिल्ली। हाँ तो वैसे हुआ। तो जब शिवजी भाग रहे थे तो भगवान, हाँ शिवजी हमेशा कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं। हाँ दौड़ के गए कृष्ण के पास। भगवान ने देखा मेरा भक्त शंकर महादेव जो कृष्ण कृष्ण कहते रहता है, ये संकट में है तो भगवान आते हैं वहां एक ब्राह्मण के वेश में और उसको कहते देखो ये शिवजी महादेव की बातों में इतना विश्वास, वो तो वहां रहते स्मशान आदि में, उनकी बातों पर इतना विश्वास उचित नहीं है। हाँ तो उनको कहा तुम ट्राई करो अपने सर में हाथ रख के देखो। वो मूर्ख था, यहाँ लिखा है मूर्ख लोग, हाँ निपट मूर्ख। तो वो मूर्ख ही था तो उसने भगवान ने उनको भ्रमित किया और उसने अपने सर पर जैसे हाथ रखा वैसे ही भस्म हुआ। तो देवताओं के पास व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए नहीं जाता, उनके पास भोग चाहिए मुझे ना, पूरा सुपर बाजार में जाते लिस्ट लेके जाता है। अब ग्रोसरी के शॉप में जाते हैं ना लिख के घर में, पत्नी बोलते है ये लिखो आटा लाओ चना डाल लाओ, हाँ कई सारी चीजें लाओ। पति लिखते जाता है लिखते जाता है, फिर दोनों साथ में जाते हैं और परचेस करते रहते मार्केट में। तो वैसे ही मंदिर में जाते हैं तो इतना बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, पत्नी आधा लिस्ट बोलती है मन में और पति आधा लिस्ट भगवान के सामने मन में, और बच्चे भी बोलते हैं, एग्जाम आती है तो बच्चे भी कुछ बोलते रहते हैं। तो जनरली ये लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं, भगवान के या देवताओं के पास उनकी सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने डिमांड्स फुलफिल करने के लिए जाते हैं। अंतवंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम, बल्कि उनसे प्राप्त होने वाले जो फल है वो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, अशाश्वत है। इसलिए अल्पमेधसाम जिनकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, छोटी बुद्धि वाले लोग जाते हैं भगवान कहते गीता में। हाँ तो ऐसे हम भौतिक भोग की कामना से जाते हैं, उनकी सेवा करने की भावना हमारे पास नहीं है, बल्कि शिव जी सोचते क्यों मुझे रोज जल चढ़ाते जा रहा है। हाँ वो आनंदित होते महादेव जब कोई व्यक्ति राम या कृष्ण की सेवा करता है। अभी लोग हनुमान के पास जाते हैं, उनके ऊपर सिंदूर लगा हुआ है ऑलरेडी, क्यों लगाते हनुमान जी सिंदूर। हाँ उन्होंने एक दिन अयोध्या में गए, सीता महारानी को देखा, सीता देवी कुमकुम लगा रही थी रेड, हाँ क्या लगा रही थी कुमकुम। कहा हो माता सीता हम क्या लगा रहे हो। उन्होंने कहा ना ये लगाने से ना भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आनंदित होते हैं। अभी भक्त का जीवन क्या है कि वो जीवित रहता है या वही कार्य करता है जिन कार्यों के द्वारा भगवान आनंदित रहे, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो वैसे ही हनुमान ने सोचा एक बिंदी रेड सिंदूर लगाने से राम इतने प्रसन्न रहते हैं, मैं अभी जाता हूँ मार्केट में जाता हूँ दुकान में जाता हूँ पूरा कितना किलो खरीदता हूँ सिंदूर, कई सारा किलो खरीदता हूँ। तो हनुमान जी गए होंगे, उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लिया अयोध्या में और अपने शरीर को लगाया और लगा के भगवान राम के सामने खड़े हो गए। भगवान राम तो हंसते रह गए, हंसते जा रहे थे और हनुमान का आनंद बढ़ते जा रहा था। तो अभी भी लोग जाते हैं तो सिंदूर की पूड़ी लेके जाते हैं हनुमान के पास, लेकिन हनुमान के जीवन से सीखते नहीं है, हनुमान की सेवा की भावना भगवान राम के प्रति, हनुमान के जो राम नाम का सदैव उनकी जीवा उच्चारण करती है वो चीजें हम नहीं सीखेंगे। हम जाके हनुमान चालीसा गाएंगे और हनुमान जी मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मेरे घर में सुख शांति ला दो हम मुझे निरोगी रखो, ये सारी चीजें तो यहाँ सेवा के लिए नहीं जाते। एक ऐसे दुर्गा का भक्त था, बहुत सारी मन्नतें मांगी और उन्होंने कहा आपको जैसे मन्नत पूरी होगी ना एक भैंस अर्पित करूंगा। क्या अर्पित करूंगा? भैंस। तो दुर्गा देवी ने कहा वाह बहुत बड़ा भोजन है। तो फिर अभी कुछ दिन देते हैं, इनकी डिजायर तो पूर्ति हो गई। जब तक इच्छा पूर्ति होती रहे ना, तब तक मंदिर के चक्कर रोज लगते हैं, है ना। घर में अगरबत्ती का धुआं चारों दिशाओं में फैलता रहता है जब तक कुछ इच्छा पूर्ति ना हो। जैसे इच्छा पूर्ति हो गई, हम ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी इच्छा पूर्ति हो गई और उसमें थोड़ा कम जाने लगा। फिर एक दिन दुर्गा देवी के सामने गया तो उन्होंने कहा, क्या है आजकल आते नहीं हो मंदिर? और सोचो भगवान आपसे पूछे और लंबे समय के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी तो इच्छा तो पूर्ति हो गई है, फिर वो भैंस का क्या हो गया? उन्होंने कहा बिना माता दुर्गा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये सरकार अलग अलग बदलती रहती है, महंगाई पेट्रोल डीजल धन धान्य कितना बढ़ रहा है और भैंस के रेट भी बहुत ज्यादा है, भैंस नहीं चढ़ा सकता, अगली बार बकरा चढ़ाऊंगा। क्या बकरा? तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ मिले तो बेटर है। तो फिर कुछ दिन बीते हैं, लंबे समय के बाद फिर से गया तो दुर्गा देवी को अच्छे से याद था, चेहरा मोहरा उनका सब कुछ। तो आए, उन्होंने कहा देखो अभी मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम तो कुछ गिफ्ट लेके आने वाले थे, गिफ्ट पैक। हाँ, तो उन्होंने कहा देखो माता दुर्गा, ये महंगाई ना बढ़ते जा रही है, अभी जीना मुश्किल हो गया है, इतने सारे बिल भरने पड़ते हैं, गर्मी के दिन भी आ गए हैं, सांस लेना भारी होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा बकरा नहीं लेकिन मुर्गी चढ़ाऊंगा आपको। क्या? तो बिल्कुल नीचे आ रहा था, नीचे नीचे नीचे, अब इच्छा पूर्ति हो गई है, मन्नत फुलफिल्ड हो गई है। तो फिर बहुत दिन बीते, फिर गया, जैसे प्रणाम किया, दुर्गा देवी के तो दश भुजाएं हैं। कितने? दश भुजाएं, क्योंकि वो इस जेल की भौतिक जगत की कंट्रोलर है, स्वामिनी है। दुर्गा इस दुर्ग फोर्ट किला, इस भौतिक जगत को फोर्ट कहा जाता है जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं, और इसकी जेलर दुर्गा देवी है, हाथ में त्रिशूल रखती है। उसके हाथ के अलग अलग असरों के अलग अलग मीनिंग है। इस भौतिक जगत के जीव जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं उनको टॉर्चर करने के लिए। तो ऐसे दुर्गा देवी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुर्गी देना भी भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ठीक है अभी देखो मुर्गी तो नहीं है, लेकिन हे माँ दुर्गा, उसने तो बोला चलो अभी कुछ मक्खी भी तो अर्पित करो। उन्होंने कहा मक्खी? तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी मक्खियां घूम रही है, उसमें से एक ले लो, हाँ, और उसी से संतुष्ट हो जाओ। तो जनरली इससे देखते हैं हम कि कोई भी व्यक्ति देवताओं को अप्रोच करता है सेवा की भावना से नहीं, भोग की भावना से। डिमांड्स फुलफिल करो, मैं कुछ चाहता हूं। इस प्रकार से देवतागण सदैव चाहते हैं कि एक जीव परम उनके जो स्वामी है, क्योंकि सारे देवता किनके अंदर सेवा कर रहे हैं? कृष्ण के। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, शास्त्र कहते हैं। इंद्र स्वर्ग का राजा है, गलती से उसे लगा कि मैं ही परम भगवान हूं, मैं मास्टर हूं, मैं बॉस हूं, मैं स्वामी हूं। तो उन्होंने गलती से क्या किया था? वृंदावन वासियों को तंग किया था, बारिश भेज दी संवर्तक बादलों से, पूरे वृंदावन को अपलावित किया। तो भगवान ने उनको थोड़ा सिखाने के लिए, बेटा तुम भूल गए हो, भगवान कहते ना अहम बीजा प्रदापिता, तो जितने भी देवता हैं जीव हैं वो कौन है? भगवान के पुत्र हैं। उन्होंने कहा इंद्र तुम भूल गए हो अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को। तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया इंद्र को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए कि तुम स्वामी नहीं हो। इंद्र फिर आता है रोते हुए, अपना मुकुट कृष्ण के चरणों में डालता है, गिड़गिड़ाता है। वैसी अवस्था ब्रह्मा की हुई थी। ब्रह्मा ने भी सोचा कि ये जो भगवान है, ये छोटा सा बालक वृंदावन में करता क्या है, ग्वाल सखाओं के साथ गव्वे चराता है, जंगल में घूमता है और एक दूसरे के झूठन खाता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? अभी सृष्टि के रचियता ब्रह्मा जिनको भगवान ने ये मेन जो इंजीनियर है, ब्रह्मा का कार्य है इंजीनियर का, उनको ये कार्य भगवान ने दिया, वो भूल गए कुछ समय के लिए। तो भगवान ने, उन्होंने क्या किया, भगवान के जो संगीत है, मित्रगण थे, सखा थे, उनको चुरा के छुपा लिया। तो भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार अपने सखाओं में, बछड़ों में और सारे वस्तुओं में किया एक साल तक। तो जब ब्रह्मा आए, उन्होंने देखा मैंने सारे बछड़ों को छुपा के रखा, यहाँ कृष्ण के साथ भी बछड़े हैं, ग्वाल बाल है, तो उसको समझ में आ गया। फिर भगवान ब्रह्मा को कहते कि हे ब्रह्मा, हाँ तुम भूल गए हो, तुम भ्रमित हो गए हो अपनी स्थिति को। तो ऐसे बड़े बड़े देवता गण भी भगवान की स्थिति को भूल जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे देवता गण सदैव बिल्कुल दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा में नियुक्त है। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा से लेकर सारे देवतागण, दुर्गा देवी भगवान के सामने नहीं जाती, हाँ वो सदैव भगवान के पीछे खड़ी रहती है। वो माया शक्ति है भगवान की, उनके भगवान के आदेशानुसार वो इस जगत में कार्य करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यश्च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। भगवान की इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी इतनी एक्टिव है, कृष्ण की डिजायर को समझती है और इस भौतिक जगत में सेवा करती रहती है, ऐसा हम शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चंडीदास थे, वो भी जब चंडी की सेवा करते थे, दुर्गा की सेवा करते थे, और उनके भाई जो थे वो शालिग्राम शिला विष्णु या कृष्ण की सेवा करते थे, और दोनों का घर साथ साथ, एक भाई पूरा जो शालिग्राम की सेवा करते थे वो क्या थे, गरीब थे, लेकिन जो दुर्गा की सेवा कर रहे थे चंडीदास, ये बहुत अमीर थे। जनरली लोग सोचते हैं ना कि अरे भगवान के भक्त हमेशा गरीब होते हैं और देवताओं के भक्त हमेशा धनवान होते हैं। आज सुबह महाराज जी क्लास में कथा सुनाई थी, वो कह रहे थे कि इसी प्रश्न को लेकर नारद भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। नारद जाते हैं, कहते कृष्णा आप बताओ ये क्या है, आप अपने भक्तों को कुछ देते ही नहीं है। भगवान कहते मैं तो देता हूँ लेकिन कुछ मांगते ही नहीं है। वो हमेशा कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। कृष्ण ने कहा मेरे भक्त सदैव कहते हैं कि आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे, ना धन चाहिए ना जन चाहिए ना कुछ और भौतिक कामना वो नहीं करते, वो केवल मेरी सेवा करना चाहते हैं। उनके जीवन का धन मैं हूं, इसलिए वो बाकी भौतिक संपदा के पीछे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब ये सही नहीं है। नारद कहते कि भगवान कहते चलो अभी दिखाता हूं, मेरे भक्त लेते नहीं है, मेरे अलावा कुछ और नहीं डिमांड करते। तो दक्षिण भारत में दो पति पत्नी थे जो बहुत सरलता से अपनी उपजीविका चलाते थे, जंगल में लकड़ियां तोड़कर उनको बेचते थे और फिर उसको सेल करके जो धन आता है उससे अपना गुजार निर्वाह करते थे और सारा समय भगवान की भक्ति में लगाते थे, विशेष रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये पति पत्नी जंगल में थे, आ रहे थे, तो उस समय भगवान कृष्ण नारद को लेकर गए उस स्थान में, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा देखो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो भगवान ने क्या किया, जैसे वो पति पत्नी आ रहे थे, पति तो पीछे थी, पति आगे चल रहा था, पत्नी ने अपना घूंघट डाला हुआ था या निकाला फिर बाद में शायद, और जैसे वो पति आगे आया तो यहाँ नारद और कृष्ण थे, तो थोड़े दूर उसी रोड पर कृष्ण ने क्या किया, बहुत सारे सोने के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनका ढेर लगा दिया, और वो पति आगे आगे चल रहा है, उसकी दृष्टि गई, अरे यहाँ तो धन है। तो फिर उसने सोचा कि ये धन इसका क्या इस्तेमाल है, क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा, ये धन साथ ले जाऊंगा, ये सारे गोल्ड कॉइन्स, तो व्यक्ति को उसी की ही चिंता करनी पड़ती है, कृष्ण का चिंतन नहीं होता, ये भौतिक धन का ये स्वभाव है। हाँ, जहां धन वहां मन, शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अभी मेरी पत्नी पीछे से आ रही है, पत्नी कहेगी कि देखो ये भगवान ने छोड़ा हुआ है, या जंगल में कौन छोड़ेगा, हमारे लिए छोड़ा है। अभी पत्नी कुछ डिमांड करे तो पति के पास शक्ति कहाँ है मना करने के लिए। उसने कहा नहीं नहीं अभी क्या करो, थोड़ी सी दूर है, पहले से ही बैठ गया, सब मिट्टी इकट्ठा कर ली और उस गोल्ड कॉइन्स जो थे उसको ढकने लगा। तो पत्नी दूर से, थोड़ी दूर से आ रही थी, और दोनों महाभक्त थे, भगवान की सेवा के अलावा उनके जीवन में कुछ और उद्देश्य नहीं था, दूसरा उद्देश्य। तो जैसे वो आ रही थी, उसका घूंघट ऊपर था, दूर से देखा कि मेरा पति क्या कर रहा है, वो समझ गई, दिखाई दिया कि सोने की जो मोहरे हैं उसको मेरा पति मिट्टी से ढक रहा है। तो वो नजदीक आ गए तो पति और टेंशन में आ गया, इसने देखा तो नहीं, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी करो, तो उसने देख ही लिया था पत्नी ने, अभी सोचा ये कहेगी क्या है, चलो ले चलो साथ। तो आई और वो कहने लगी, विद्वता पूर्ण वचन उसने कहे, ऐसे वचन जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कह सकते। इतना बड़ा उसकी अनुभूति थी। उसने कहा कि हे पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं, एक मिट्टी को दूसरे मिट्टी से ढक रहे हैं। तो जो पतिदेव का हृदय पिघल गया कि मेरी जो पत्नी है उसके आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है वो मुझसे भी अधिक बड़ी चली है। तो वो पिघल गया अपनी पत्नी का ये अंडरस्टैंडिंग भौतिक जगत के प्रति देख कर। तो फिर वो निकलते हैं, उस स्थान से निकल जाते हैं। यहाँ नारद और कृष्ण खड़े थे, नारद को कृष्ण कहते, देखा हमें प्रैक्टिकल दिखाने लाया था तुम्हें, मैं दे रहा हूं फिर भी नहीं ले रहे हैं। उनका केवल एक ही धन है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन तस्य दृढव्रता, वो सतत मेरा कीर्तन या मेरा स्मरण और मेरी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, भौतिक भोग प्राप्त करने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। फिर उन्होंने कहा और भी दिखाता हूँ एक बार। तो फिर दूसरी बार इनको तो जंगल में जाना पड़ता था, पति पत्नी को, वहां से लकड़ियां तोड़ते थे, सेल करते थे। तो भगवान और नारद पहले एक स्थान में पहुंचे जहां वो पहुंचने वाले हैं, वहां सारी लकड़ियां तोड़ के गट्टा बांध के रख दिया और ये पहुंच गए वहां। अभी उनको लगा अभी सारी तैयार चीज कोई मिले तो व्यक्ति वैसे उठा के भाग जाता है, नहीं हमें कुछ गिरा हुआ नजर आए तो हम वैसे उठा के यूज करना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो दूसरों का धन है वो हमारे लिए मलवत होना चाहिए या मिट्टी के समान होना चाहिए। तो ऐसे है, जब उन्होंने देखा तो पत्नी ने कहा कि देखो अरे पहले ही कोई लोग आए हैं, उन्होंने तोड़ के उनके लिए रखा है, चलो हम दूसरी लकड़ियां तोड़ते हैं। तो ये भावना, तो भगवान नारद को कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे अलावा कुछ नहीं चाहते इस भौतिक जगत में। तो वैसी स्थिति दुर्योधन और अर्जुन की थी, पांडवों की और कौरवों की। हमारी स्थिति जब हम टेंपल जाते हैं तो हम दुर्योधन की मेंटेलिटी को लेकर जाते हैं, बल्कि हमें अर्जुन की भावना को लेकर मंदिर जाना चाहिए। दुर्योधन जाता है मंदिर, लेकिन घर वापस आते समय कृष्ण को नहीं ले आता, कृष्ण की सारी संपदा, संपदा में से उनकी जो सेना है, इन सब चीजों की चाह करता है। लेकिन जब अर्जुन वापस आते टेंपल जाकर, वो क्या ले आते अपने साथ, कृष्ण। तो ये अंतर है। तो हम दुर्योधन, धन, उनके नाम में भी धन है, दुष्टता से धृतराष्ट्र भी हैं, जैसे धूर्तता से जो राष्ट्र हड़प करना चाहता है दूसरों का, वो धृतराष्ट्र है। तो आज भी प्रत्येक घर में दुर्योधन और धृतराष्ट्र है। तो हम जाते हैं दुर्योधन के बात ही, भगवान नहीं चाहिए हमें, भगवान के पास अपने लिस्ट समर्पित करते हैं। व्यापार, भगवान एक कितना बड़ा व्यापार, इससे बढ़कर अच्छा व्यापार नहीं है। हम भगवान के सामने एक फूल डाल दो लेकिन बहुत बड़ी चीज ले लो। मंदिर जाते तो देखते सबसे खुला रुपया, सबसे छोटी नोट कौन सी है मेरे जेब में, वो भगवान के सामने। और फिर भगवान से क्या मांगेंगे, 1 करोड़ की जो वस्तु है ना वो डिमांड करेंगे। 10 रुपए डाले तो कौन कितने और रुपए की वस्तु मांगनी चाहिए भगवान से, 10 रुपए की ही। तो वैसी स्थिति है दुर्योधन की, वो भगवान को छोड़कर बाकी चीजें लेके आया लेकिन जीवन पराजित हो गया, निष्फल हो गया। तो वैसे हमें अर्जुन की भावना को धारण करना चाहिए। तो यहाँ जो ये चंडीदास है जिनकी स्टोरी हम कब से चर्चा कर रहे हैं, तो उनके भाई एक तो विष्णु की पूजा करते थे शालिग्राम शिला की, और ये चंडी की सेवा करता था इसलिए दूसरे का नाम था चंडीदास। तो फिर जब ये जो शालिग्राम शिला की सेवा करने वाला जो उनका दूसरा भाई था, उनके पास कुछ धन आदि नहीं था, भगवान को अर्पित करने के लिए फूल भी नहीं थे, लेकिन पड़ोस में ही भाई का कोठी है, दूसरे चंडीदास का कोठी है, कोठी के सामने बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें नाना प्रकार के फूल उगे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि कैसे क्या करो, भगवान को फूल नहीं, तो वो थोड़ा दीवार के पास जाते, बीच में दीवार होगा और दीवार के पास एक वृक्ष था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आए थे। ये जो भक्त है जाता है, जो शालिग्राम शिला की पूजा करता था, और वो जाकर फूल को देखता है और पेड़ के ऊपर से ही भगवान को अर्पित करता है, कृष्ण अर्पणमस्तु हो, कि कृष्ण को ये फूल अर्पित कर रहा हूं। भक्ति इतनी सरल है, फूल आप तोड़ो या नहीं तोड़ो, खरीदो या नहीं खरीदो, भगवान को आप अर्पित कर सकते हो, लेकिन एक चीज आवश्यक है, भक्त्या, भक्ति चाहिए, लव एंड डिवोशन, प्रेममयी सेवा की जो भावना है वो हमारे हृदय में चाहिए। तो उसने वो अर्पित कर दिया शालिग्राम शिला को। तो भगवान जब भक्त अर्पित करते हैं तो उसको तुरंत स्वीकार करते हैं, इंतजार नहीं करते। भगवान की ये भावना है, जब भक्त कोई चीज ऑफर करता है भगवान को, तो भगवान तीव्रता से उसको ग्रहण करते हैं, तीव्रता से उसको तुरंत स्वीकारते हैं। तो ये जो चंडीदास है, अभी वो फूल तो ऑफर हो गया था, जैसे उसने ऑफर किया तो ये जो वो आ गए अपने घर में, तो चंडीदास उठा, अभी उनकी दुर्गा पूजा के लिए बहुत सारे फूल तोड़ने लगा, और उसी उस दिन उसी ट्री के पास गया, उसी पेड़ के फूल निकाले, जाके जैसे ही चंडी या दुर्गा के चरणों में डाले, दुर्गा देवी स्वयं प्रकट हो जाती है वहां, कहते कि हे चंडीदास बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा आज क्या जादू हो गई है, माता दुर्गा इतने सालों से तुम्हारी उपासना करता हूं, एक भी दिन इतने फूल मैंने अर्पित किए, इतने व्रत किए, कभी तुम बोली नहीं मुझसे, आज तो साक्षात प्रकट हो गई हो, क्या क्या कारण क्या है बताओ। तो चंडीदास को कहती है कि एक चीज आज आप तुमने की है जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, कि कृष्ण को अर्पित किए हुए जो फ्लावर प्रसाद है वो मुझे अर्पित किया है और वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। देवतागण आनंदित होते हैं जब कृष्ण का नैवेद्य, कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद, कृष्ण ने यूज की हुई मालाएं, फ्लावर्स, जब उनको हम अर्पित करते तो वो आनंदित होते हैं, वो उनको ये प्राप्त करना बहुत रेयर है। तो दुर्गा देवी ने कहा कि इससे मैं प्रसन्न हो गई हूँ, ये कृष्ण प्रसाद रूपी फूल मुझे मिला है, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों देवता लाइन में खड़े रहते हैं। प्रसाद के लिए आप लाइन में खड़े रहते हैं कि नहीं प्रोग्राम के बाद? हाँ, देवतागण ये सब भगवान की जो वस्तु यूज की हुई है उनको प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो दुर्गा देवी ने कहा, फिर तुमने आज तक मुझे ये सीक्रेट क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण है वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेविका हूं। चंडीदास ने कहा, ये तो आज तक तुमने नहीं बताया, फिर मुझे क्या करना चाहिए बताओ। टू द पॉइंट, उन्होंने कहा तुम्हें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए। जैसे चंडीदास ने यह सुना तो चंडीदास रोने लगे। उन्होंने कहा कि कितना मैं अधम और अज्ञानी व्यक्ति हूं कि मैंने अपना जो सारा जीवन है वो बर्बाद किया, अपना अपने समय का अपव्यय किया है कृष्ण की सेवा ना करके। हाँ, तो फिर उन्होंने तब से क्या किया, कृष्ण की सेवा की और आगे चलकर महान भक्त बने, जिनको उनका नाम चंडीदास ही रहा। उन्होंने आगे चलकर इतने सारे कृष्ण के ऊपर भजन लिखे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक भजन किनके पढ़ते थे, सुनते थे, तो वही चंडीदास के थे। हाँ, ये ऐसे चंडीदास महान जो भक्त हुए थे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें विशेष रूप से इन श्लोकों में भी यही चर्चा आई है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, देवताओं की जो उपासना है उसको उचित रूप से हमें समझना चाहिए कि उनकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति शब्द देवताओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कोई कह सकता है कि मैं महादेव का भक्त हूं, नहीं, उपासक हूं। तो उपासक हमेशा कुछ ना कुछ लेन देन चाहता है, भक्त क्या करता है, चाहता नहीं बल्कि भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसलिए शास्त्र या भगवत गीता में इन श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में अंतवंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यन्ति मद् भक्ता यन्ति मामपि। देवताओं की पूजा अल्प बुद्धि के लोग करते हैं और वो लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे जो भक्त हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की जब हम उपासना करते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तो किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने आखिरी में जोर से बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने ये नहीं बोला माम द्वितीय तृतीय 33 कोटि शरणम व्रज, ऐसा कुछ बोला मैं भगवान ने नहीं, भगवान ने बोला माम एकम। फिर उसी चीज को कहा है एकले ईश्वर कृष्ण। फिर ब्रह्मा ने उसी के लिए बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण इस चीज को स्थापित करना चाहते हैं। यदि कृष्ण इतना सब कुछ बोले तो किसी देवता की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि कृष्ण आपने ऐसा ही क्यों बोला एकम शरणम व्रज। हाँ, कोर्ट केस क्यों नहीं की किसी देवता ने? हाँ, कि चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? किसी भक्त को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दी किसी देवता ने? भगवान ने इतनी सारी चीजें गीता में क्लियर की, तो इसके अगेंस्ट कुछ विपरीत होता तो फिर कोई देवता भगवान के स्टेटमेंट को क्या करता, चैलेंज करता। ऐसा सुनने में आया आपने चैलेंज किया हुआ? नहीं। तो इसलिए है इस भगवत गीता की जो शिक्षा है जिसको हमें समझना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे संप्रदाय में और एक महान भक्त हुए हैं जिनका नाम था गोविंद कविराज। बंगाल में लगभग 350-400 साल पहले, तो ये जो गोविंद कविराज ये भी एक दुर्गा के महान भक्त थे और उनके भाई रामचंद्र कविराज कृष्ण के महान भक्त थे। तो ऐसे गोविंद कविराज, ऐसा वर्णन आता है कि दुर्गा देवी उनसे साक्षात वार्तालाप किया करते थे, लेकिन वो इतने अधिक बीमार हो गए कि उस समय वो बेड में ही थे, मृत्यु उनके नजदीक था। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे दुर्गा देवी, मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त करो, इस भव सागर से मुझे छुटकारा दिलाओ। दुर्गा देवी तो प्रकट नहीं हुई, लेकिन वहाँ बहुत सारे मृत्यु के बेड में थे राम गोविंद कविराज। तो उस समय सारे लोग, उनके रिलेटिव्स वगैरह सब इकट्ठा हो गए थे, है ना। कोई मरने लगता है तो सब लोग बाय बाय करने आते हैं, जाइए, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, बेचारे कोई रो रहा है, कुछ तो हंस रहे होते हैं, अच्छा है मेरा टेंशन जा रहा है। संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग हैं, हमसे हमेशा कोई सुखी रहते हैं, हमसे हमेशा कोई दुखी, ये हमेशा बना रहेगा जीवन के अंत समय तक। तो उनको जो लोग आए थे रिलेटिव इकट्ठा हुए थे, ये जब ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि भौतिक जगत के दुखों से मुझे निकाल दो, तो दुर्गा देवी प्रकट तो हुई नहीं, लेकिन दुर्गा देवी बोली, उन्होंने कहा कि देखो, इस भौतिक जगत से मुक्त करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जेलर कोई जेल से छुट्टी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार से दुर्गा देवी के पास अधिकार नहीं है इस भौतिक बंधन से मुक्त करने का, उसका अधिकार किसके पास है? कृष्ण के पास है। तो उन्होंने कहा कि हे गोविंद कविराज, तुम्हें मेरे जो स्वामी हैं कृष्ण हैं, श्याम सुंदर कृष्ण, गोविंद जिनको कहा जाता है, उनकी शरण ग्रहण करो। जो नंद नंदन है, नंद महाराज के पुत्र हैं, उनकी भक्ति करो। जब ये आवाज सुनी तो वो दुखी होकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया अपने जीवन में। फिर ये जब दुखी अवस्था में थे, उसी समय उनके मुख से गीत निकला। वो गीत क्या था? भज हुरे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारा विंदरे। हे मेरे पागल मान, तुम जो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है, उनका भजन करो। हाँ, तो इस प्रकार से हम शास्त्रों में हजारों उदाहरण समझते हैं। जब रावण मरने वाला था तो पार्वती देवी ने कहा, देखो आपका भक्त की अभी हालत खराब है, आपको जाना पड़ेगा। शिवजी को कह रहे थे, शिवजी ने कहा नहीं, मैं आगे जा नहीं सकता, क्योंकि वहां कौन खड़े हैं? प्रभु श्री राम। तो इसलिए भगवान ही हमारे असली रक्षक हैं और भगवान ही असली स्वामी हैं या आराधना करने योग्य है। लेकिन ऐसे भगवान को जो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसे भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसे भगवान का कोई नाम आदि नहीं है, निराकार है। क्या है? निराकार। बाकी सबको आकार, लेकिन भगवान निराकार। ये मूर्खता का सिद्धांत है, तू ही निराकार। अभी इनको आकार है, उसके बाप को आकार है, उसके बाप को आकार है, सबको आकार है, लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो क्या कहता है व्यक्ति? कोई आकार नहीं। आकार होगा तो सेवा करनी पड़ेगी। ये सब निराकार वाले सेवा से भागना चाहते हैं। भगवान की सेवा नियमों का पालन नहीं करना है, सरल काम है। भगवान का कोई आकार नहीं है, निर्विशेष। हाँ, ये विशेष शब्द मीन्स फॉर्म, रूप है। सविशेष, हाँ, सविशेष और निर्विशेष, इंपर्सनल। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया अबुद्धया। अबुद्धया मीन्स भगवान कहते जो अल्प ज्ञानी है वो मुझे क्या सोचते हैं? मैं पहले अव्यक्त था, कोई रूप आदि नहीं था, लेकिन अभी जगत में आता हूं ना तो रूप लेके आता। ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं। भगवान कहते मेरा आकार वही आध्यात्मिक जगत में भी है, बीच में भी है और इस संसार में भी है। हाँ, परम भाव अजानंतो ममा व्यय अनुत्तमम। तो जो, क्योंकि ऐसा क्यों सोचते ये अल्प ज्ञानी लोग? भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसको नहीं जानते। तो भगवान ऐसे मूर्खों के सामने प्रकट नहीं हो सकते। तो जो निर्विशेषवादी भगवान, हाँ, ये जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, भगवान को निराकार स्वीकार करते हैं। लेकिन यही प्रश्न अर्जुन ने 12वें अध्याय में पूछा था भगवान को। भगवान को 12वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, तो कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं
अर्जुन को पूछते हैं कि एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम परियुपासते, जो सतत आपकी भक्ति में लगा है, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषा के योग वित्तमः। हे कृष्ण, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, जो आपकी सेवा में तत्पर है या जो आपके अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है, पूजा करता है। तो भगवान कहते हैं, मैया वैश्य मनोए मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्ता तेने युक्त तमामता, श्री भगवान ने कहा। तो कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे सकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। सरल है, तो आध्यात्मिक जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं प्रवचनों में, बड़े बड़े साधु मणि ऋषि बड़ी बड़ी ज्ञान झाड़ते हैं और कुछ समझ में नहीं आए ना, तो समझना कि बहुत अच्छा प्रवचन था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ जाए क्या चल रहा है, कहाँ की चीजें बोलते जा रहा है जो वक्ता है, कुछ दिमाग से परे जा रहा है, तो समझना कि अरे क्या प्रवचन था, हाई क्लास था। तो भगवान ने सरल दिया है, अर्जुन के माध्यम से इतना सरलतम हमें समझाया है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सीख सकता है, और वो प्रोसेस भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो हमारे आराधनीय हैं, और उनकी आराधना करना ही हमारा क्या है, परम लक्ष्य है। तो जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष हरा भरा रहता है, या पेट को भोजन देने से सारा शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करने से बाकी और किसी की पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन तुस्ते जगत तुस्त, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। यस्मिन तुस्ते, कृष्ण को तुष्ट करो, सारा जगत तुष्ट हो जाएगा। द्रौपदी ने क्या किया, जब ये दुर्वासा मुनि और सारे मंडली उनके वहां गए थे भोजन करने के लिए, तो वो बेचारी कष्ट में थी, तो उसके पास अक्षय पात्र था, तो कुछ नहीं था उनको खिलाने के लिए। इतने सारे 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ था, आपके घर में 6 भक्त भी आ जाए प्रसाद पाने के लिए तो हमें कितना कष्ट होता है, लेकिन कितने सेना आए थे एक गुरु के साथ, 60,000। अब सोचो, फिर भी उनका दिल छोटा नहीं हुआ पांडवों का। जब सेवा करने की भावना होती है, कृष्ण हमें सामर्थ्य देते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, डिजायर। तो ये तत्पर थे। तो उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए, कहां से आए, द्वारका से। कृष्ण, द्रौपदी ने कहा, इतना कब से चिल्ला रहे हो कृष्ण, इतना लेट कैसे हो गए। कृष्ण कहते हैं, मैं पहले ही बोला हूं ना, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त सदैव मेरा नाम लेते वहां मैं हमेशा होता हूँ। द्रौपदी में तुम्हारे साथ हमेशा हो, पांडवों के साथ हमेशा कृष्ण होते हैं, लेकिन ये जब द्रौपदी ने कहा कि हे द्वारकाधीश जल्दी आइए, उन्होंने कहा तुमने द्वारकाधीश बोला ना, इसलिए मुझे तुम्हारे पास से पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर वहां से वापस आना पड़ा यहाँ, तो इसलिए हमें सोच के भगवान के नामों को लेना होगा। इसलिए भगवान ने कहा विलंब हो गया। फिर मुझे बहुत भूख लगी, क्या है, हे द्रौपदी क्या है। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी था, उनका वर्ण सेम था, तो जब उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस पात्र में थोड़ा सा शाक, पात्र तो ले आओ, जैसे देते ना चेक करो कुछ तो होगा बर्तन में, कुछ तो होगा घर में। तो वो गई, पूरा बर्तन ही उठा के लाई, देखो कुछ भी नहीं है, झूठ नहीं बोल रही हो। तो भगवान ने देखा, हाथ डाला, देखा थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, तो फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कृष्ण उस चीज को अपने जिह्वा में रखते हैं, वैसे जो मंडली आए थे भोजन ग्रहण करने के लिए उनके घर में,
और पहले स्नान बाद में भोजन। अभी कलयुग में क्या है, पहले भोजन बाद में स्नान। हाँ, लोग उठते ही चाय पियेंगे, मुंह में सारे जर्म्स है, हाँ सारी गंदगी मुंह में है, उठते ही खाना शुरू करते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। तो ये सारी सेना गई थी स्नान करने, तो वहां उन्होंने भेजा कि वहां कहा जब भगवान ने स्वीकार किया तो यहाँ सारे स्नान करते करते इन सबको डकार आने लगे कि अरे क्या हो गया, पानी तो हमने पिया नहीं स्नान करते समय, लेकिन पेट भर गया है, फुल गया, ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ खा लिया है। तो कृष्ण ने कहा हे भीम इधर आओ, तुम्हारी गदा कहाँ है? तो किसको बुलाने के लिए किसको भेज रहे थे कृष्णा, जान बूझ के? कृष्ण ने कहा भीम इधर आओ, गदा लेके आओ। भीम आए, हट्टे कट्टे बलवान, गदा यहाँ रखते तो ऐसे वैसे बलशाली लगते हैं। तो कहा जाओ जरा उस सेना जो आई है प्रसाद ग्रहण करने, घर में उनको बुला के लाओ कि सब तैयार है। हाँ, दरिया बिछाई हुई है, प्लेट्स लगाई हुई है, केले के पत्ते डले हुए हैं, आप चलिए। तो भीम गए और ऊपर से आवाज लगाई, जो नदी में स्नान कर रहे थे जो ऊंचा स्थान था, ऐसे वो गए और कहा भोजन तैयार है, प्रसादम इज रेडी। जैसे बोला तो वो लोग दुर्वासा मुनि सोचने लगे अभी तो पेट फूल है, वहां जाकर हमारी हालत खराब हो सकती है, अभी कैसे करें। अभी कहूंगा नहीं नहीं भूख नहीं है तो गदा दिखाई दे रही थी सबको, मना करेंगे तो प्रसाद नहीं गदा खानी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा आप आगे चलिए, हम आ ही रहे हैं, आ ही रहे नहीं भाग रहे थे वो लोग वहां से। तो भीम गए इस तो भाग गए वहां से। तो शास्त्र कहते हैं जब ये वर्णन आता है तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण को तुष्ट करोगे तो किसी और को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त के जीवन में कुछ भौतिक कामना भी हो, कुछ भौतिक भोग की इच्छा भी हो, तो कभी देवताओं को अप्रोच नहीं करता है, वो किन्हें अप्रोच करता है, कृष्ण को ही। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम। चाहे आपके अंदर बहुत कामना क्यों ना हो या आपके अंदर कुछ भी इच्छा नहीं हो तो भी चलेगा। हाँ, दोनों अवस्था में क्या करो, कृष्ण का भजन करो। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान की जो भक्ति है उसे करो, तुरंत कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन श्लोकों में यही वर्णन आया है कि शरणागति स्वीकार करनी है लाइफ में, हम सरेंडर हो ही रहे किसी ना किसी के पास, बचपन से लेकर हमारा सर किसी ना किसी के अंडर है, सर अभी तक ऊपर उठा नहीं है, अभी बुढ़ापा आएगा तो भी हम सरेंडर है बुढ़ापे को, मृत्यु को भी सरेंडर है, आप बीमारियों को भी सरेंडर है, भौतिक अभी इतनी गर्मी हो रही है तो हमारा सर झुका हुआ है, सरेंडर है कि नहीं, हम कंप्लेंट कर सकते हो नहीं कर सकते, कितना कष्ट है। तो हम हमेशा सरेंडर हैं, लेकिन हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और कृष्ण की शरण ग्रहण करने का सरलतम उपाय है उनके ये जो मैसेज है भगवद गीता का, उसको समझना। जितना अच्छे से भगवान के संदेश को हम समझते रहते हैं उतने ही अच्छे से हम भगवान की शरणागत होते जाते हैं, भगवान के करीब जाते हैं। इसलिए भगवान का जो संदेश ये हमारे लिए है, हमें इसको समझना होगा। कई बार लगते कि कुछ समझ में नहीं आता, सारे श्लोक एक जैसे लगते हैं, हाँ तो भगवान कहते कोई व्यक्ति समझ में ना आए पढ़ते रहता है तो भगवान कहते मैं उसे बुद्धि देता हूँ समझने के लिए। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम पयांति, बुद्धि के स्रोत कौन है, उगम स्थान कृष्ण है। बुद्धिमान होना है तो कृष्ण की शरण ग्रहण करना, कृष्ण की शरण ग्रहण करने का मतलब है कृष्ण के संदेश की शरण ग्रहण करना, कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण करना, और तीसरा है कृष्ण के नामों की शरण ग्रहण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद के गीता गौर प्रेमानंद।